आज है 1 दिसंबर दिन मंगलवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। पेरिस में दुनिया के नेताओं ने बताया ग्लोबल वार्मिंग को बड़ा खतरा। सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच हुई अनौपचारिक मुलाकात।
अच्छी गुफ्तगू हुई है और अच्छे अंदाज में हुई है, अच्छे माहौल में हुई है और उनकी तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया है कि हमें अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी तरफ से भी यही अपना ख्वाहिश है।
मायावती ने कहा निजी क्षेत्रों में दलितों को मिले आरक्षण।
दलित एवं कमजोर तबकों को प्राइवेट सेक्टर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, अब इसे देने का फैसला लिया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होगा।
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित देशों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस में चल रहा सम्मेलन एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अब कदम उठाने ही होंगे। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग ने 2024 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने के विरोध में वोट दिया है। हैम्बर्ग उन 5 शहरों में शामिल था जो इन खेलों की मेजबानी हासिल करने के लिए मैदान में थे। अन्य 4 शहरों में रोम, पेरिस, बुडापेस्ट और लॉस एंजल्स के नाम शामिल हैं। रविवार को हैम्बर्ग में हुए जनमत संग्रह में 51.6 वोटरों ने शहर में ओलंपिक खेल कराने के विरोध में अपना मत दिया। खेलों के लिए ना कहने वाले समूह का कहना है कि जो पैसा ओलंपिक खेलों के आयोजन पर खर्च होगा उसे अन्य बेहतर चीज़ों पर खर्च किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने रूस के विमान को केवल इसलिए मार गिराया जिससे कि वो कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से मिलने वाली तेल की आपूर्ति की रक्षा कर सके। पुतिन ने ये बात पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान कही। पुतिन ने कहा हमें ये दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में बनाया जाने वाला तेल जिसका नियंत्रण चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के हाथों में है वो तुर्की को पहुंचाया जाता है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विमान को केवल इसलिए गिराया गया कि हम उसके सबूत ना जुटा सकें, खासकर उन बंदरगाहों के जहां इस तेल को टैंकरों में भरा जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। हालांकि तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दोवुतोग्लू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि देश के शीर्ष नेताओं को इस तरह के भावुक बयानों से बचना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान में करीब 4,000 लोगों ने गाना गाकर रिकॉर्ड बनाया है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ गाने वाले लोगों का यह रिकॉर्ड तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशाबगाट में बनाया गया। करीब 4,000 लोगों ने एक टेंट के नीचे फॉरवर्ड ओनली फॉरवर्ड गाने के लिए जमा हुए। इसमें तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति भी शामिल थे। इस गाने के बोल उन्होंने ही लिखे थे और उन्होंने प्रदर्शन के दौरान सिंथेसाइजर बताकर गाने वालों का साथ दिया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकटरामन रामकृष्णन मंगलवार को ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष पद संभालेंगे। ये पद ब्रिटेन के विज्ञान जगत के सबसे बड़े पदों में शामिल है और वो 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। रामकृष्णन सर पॉल नर्स का स्थान लेंगे। रॉयल सोसाइटी की वेबसाइट के मुताबिक मार्च में ही इस बात की पुष्टि हो गई थी कि 2009 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सर वेंकी रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बनेंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर चल रहे सम्मेलन से। पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर हो रहे सम्मेलन में भाग लेने हुए दुनिया भर के नेताओं ने इस मुद्दे पर एक सहमति बनने पर उम्मीद जताई है। इस सम्मेलन में शामिल हुए नेताओं ने पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर चिंता जताई, साथ ही अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों ने इस सम्मेलन में दुनिया की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने की भी उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित देशों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वहीं उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। पूरे ब्यौरे के साथ अमल चौधरी।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पहुंचे देशों के नेताओं ने कहा कि वो हर तरह से प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। सम्मेलन में पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु को सबसे ज्यादा नुकसान विकसित देश पहुंचा रहे हैं, ऐसे में ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए और इसे कम करने में योगदान दें। उन्होंने कहा,
डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक क्लीन एनर्जी अवेलेबल, एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल द डेवलपिंग वर्ल्ड।
विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वो सभी विकासशील देशों के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ उसे सस्ती और सुलभ भी बनाएं। ये हम सभी के फायदे के लिए है, इसलिए हम चाहते हैं कि विकसित देश 100 अरब डॉलर की सहायता राशि 2020 तक विकासशील देशों को दे जो इस मुश्किल से निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति ने भी साफ किया कि जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि कई देश इसके बदलाव के जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा अमरीका को ही भुगतना होगा। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा,
I've come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest emitter.
मैं यहाँ उस नेता के तौर पर आया हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश का राष्ट्रपति है, लेकिन साथ ही हम विश्व में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों में दूसरे स्थान पर हैं। इसलिए हम समझते हैं कि आज जो ये मुश्किल खड़ी हुई है, हम बहुत हद तक उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इससे निपटने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो भी फैसला हो वो इस तरह से किया जाए कि हर देश उसे मानने के लिए बाध्य हो। पुतिन ने कहा,
It is of principled importance for the new climate agreement to build upon.
ये बहुत ही जरूरी है कि जो भी तय हो वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन की संरचना के अनुरूप हो। ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता होना चाहिए। इसे अमल में लाने के लिए विकसित और विकासशील देशों को साथ मिलकर काम करना होगा। ये समझौता व्यापक, प्रभावी और न्यायसंगत होना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। सोफे पर बैठकर दोनों नेताओं के बीच 2 मिनट तक अनौपचारिक बातचीत भी हुई। मुलाकात के कुछ घंटे बाद शरीफ ने कहा कि मोदी से अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा,
अच्छी गुफ्तगू हुई है और अच्छे अंदाज में हुई है, अच्छे माहौल में हुई है और उनकी तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया है कि हमें अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी तरफ से भी यही अपना ख्वाहिश है। तो मेरा ख्याल है कि जब दोनों तरफ ख्वाहिश है तो फिर मामलात आगे ना बढ़ें तो ये फिर मुनासिब नहीं है।
इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के अलावा 190 से ज्यादा देशों के शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2100 तक 1.5 से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक धरती का तापमान बढ़ना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ इस सम्मेलन का मकसद दुनिया के औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे को रोकना है।
अमल चौधरी बता रहे थे कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे नेताओं ने पहले दिन किन किन बातों पर जोर दिया, तो नेताओं के इन भाषणों को किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्या इनसे किसी सकारात्मक कदम की उम्मीद की जा सकती है, यही सवाल मैंने पूछा पर्यावरण मामलों के जानकार और बीबीसी संवाददाता नवीन खड़का से।
भाषण की जो बात है, भाषण तो सभी नेताओं ने जिस तरह से दिए पॉजिटिव नोट में ही देते हैं, तो मोदी जी की भाषण भी सकारात्मक रूप में लिया गया है। जैसे कि आपने कहा, जो सौर्य जो ऊर्जा के लिए भारत ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है उस कदम से वो जो पॉजिटिव नोट है। लेकिन देखिए, बात ये होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो भाषण करके चले जाते हैं और जो रियल नेगोशिएशन है आज से 2 हफ्ते तक चलनी है, तो अब देखना ये है कि जो रियल नेगोशिएशन होती है, रियल मीटिंग होती है, उसमें जो भारत और ये द्रुत गति में विकास कर रहे देश और विकसित देश जो हैं, इनके बीच में जो खींचतानी चल रही है इतनी सालों से, उसमें कोई सहमति होता है या नहीं?
जी, आप सहमति की बात कर रहे हैं, वहाँ से जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसमें इस सम्मेलन में शामिल कुछ देशों ने ये उम्मीद जताई है कि एक सहमति तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से देशों की वहाँ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं?
शुरू की जो बातें हैं, नेताओं ने जिस तरह से बातें की, उन सब की जो श्रोताओं हैं वो सब ने अच्छे माने हैं, लेकिन जो देखिए मुख्य जो मुद्दा है, जैसे कि अब कौन कार्बन उत्सर्जन घटाएगा और जो है फाइनेंस की बात, पैसा कौन डालेगा, जो प्रविधि की आवश्यकता है और लोगों को जलवायु परिवर्तन की जो पीने के लिए जो पैसे चाहिए वो कौन देगा, ये सब बहुत ही पेचीदा मामले हैं और इसी में अब बातें होगी। अब तक जो शुरू की बात है वो इतनी नहीं है, जो नेगोशिएशन की लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब देखना ये कि इनमें कोई सहमति बना पाएंगे या नहीं।
ये बताइए कि ऐसी खबरें आ रही थी कि वॉशिंगटन ये कह रहा है किसी तरह की कानूनी बाध्यता उसके लिए स्वीकार्य नहीं होगी, उधर भारत का कहना है कि वो जो है एक लॉबी कर रहा है अपने लिए, कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है आपको?
देखिए, अमेरिका की जो पोजीशन है कि वो बाध्यकारी संधि में सही नहीं करेगा, इस तरह की जो बातें आ रही हैं, वो कुछ देश हैं जिनको वो ये अमेरिका का जो पोजीशन है वो उनको ठीक लगता है, और कई देश हैं जैसे कि ईयू है, ईयू जो है लीगली बाइंडिंग कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की वकालत कर रहा है, बात अटका हुआ है। अब रहा बात चीन और भारत का, तो चीन और भारत तो वो कहते क्या है कि ये जो बाध्यकारी अगर होता भी है तो ये जो विकसित देश है उनके लिए होनी चाहिए, हमारे लिए नहीं, हम तो विकास से कुछ करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन पहले हमें विकास करने दो और फिर कई देश कई वर्ष बाद कई साल बाद हम भी शायद बाध्यकारी बातें करेंगे।
तो भारत कितना तैयार दिख रहा है अपनी तरफ से आपको?
देखिए, शुरू से जो भारत की अड़ान क्या है, इससे पहले जो संधियां हुई उसमें विकास उन्मुख जो विकासशील देश हैं और विकसित देश उनके बीच डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, वो जो विभेद है वहाँ जो संधियां हैं उन सब में जो ये डिफरेंस दिखाया गया है, तो भारत और चीन का मानना है कि वो डिफरेंशिएशन जो बोलते हैं वो अभी भी होनी चाहिए। जो विकसित देश है वो उनका मानना है कि अब हम बहुत आगे चल चुके हैं और चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है, भारत तीसरा बड़ा कार्बन उत्सर्जक है, तो इसलिए वो जो डिफरेंस है वो होनी नहीं चाहिए, सबसे बड़ा कांटा है, अगर इसमें बात नहीं बनी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाल ही में फिर एक और मुद्दा आ गया, वो क्या है कि ये जो विकसित देश हैं इनको गरीब देशों को पैसे देनी है जो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट से रहने के लिए उसे अभ्यस्त, तो ये बात हो रही थी, तो इसी में विकसित देश ये भी कहने लगे कि वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग अब जो द्रुत गति में विकास कर रहे भारत चीन ब्राजील साउथ अफ्रीका की तरह की देश जो हैं उनसे भी पैसा आने चाहिए, तो ये भारत और चीन को ये बात नहीं मान रहे हैं, तो ये एक और मुद्दा आ गया। तो मुख्य रूप से ये दो बातें हैं, अगर इनमें कुछ सहमति होती है तो बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी, ऐसा मानना है विश्लेषकों का।
ये थे पर्यावरण मामलों के जानकार और बीबीसी संवाददाता नवीन खड़का। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दलित समुदाय को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने की मांग उठाई है। मायावती ने कल राज्यसभा में पदोन्नति में भी आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा,
हमें ये अच्छा लगता यदि प्रधानमंत्री बाबा साहब की 125वीं जयंती के मौके पर भारतीय संविधान के प्रति अपनी सच्ची प्रतिबद्धता दिखाते हुए उस दिन खासकर समाज के गरीब व कमजोर तबकों के हितों में कुछ ठोस कार्य करने का ऐलान करते हुए ये कहते कि देश में दलित एवं कमजोर तबकों को प्राइवेट सेक्टर व अन्य जिन भी क्षेत्रों में इन्हें अभी तक भी आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है तो उसे वर्तमान केंद्र की सरकार ने इनकी 125वीं जयंती के मौके पर अब इसे देने का फैसला लिया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करते तो ज्यादा अच्छा होता। पदोन्नति में आरक्षण का लटका पड़ा हुआ संविधानिक संशोधन विधेयक भी पास करने के बारे में भी इसका ऐलान करते।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग उठाकर नई बहस शुरू कर दी है। इसे लेकर हमारे सहयोगी अमल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदित राज से बात की और पूछा कि इन मुद्दों पर उनका और भारतीय जनता पार्टी सरकार का क्या रुख है।
हमारी सरकार को जो करना हम करेंगे और जो उन्हें करना है वो करें, और जब वो मुख्यमंत्री थी तभी तो पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हुआ था।
निजी क्षेत्र में जो आरक्षण का मुद्दा मायावती ने उठाया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
अब लगभग कमोबेश सभी उठा रहे हैं, हम भी सामाजिक प्लेटफॉर्म से 7 दिसंबर को उठा रहे हैं निजी क्षेत्र में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ है जिसके तत्वाधान में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली हो, उसमें इस बात को हम भी उठा रहे, हमने तो सबसे पहले इसी को हम ही ने उठाया था।
उदित राज जी, बीजेपी की नीति इस मुद्दे पर क्या है?
भारतीय जनता पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन इस समय नहीं हूँ, मैं इस समय दलित की से हूँ। आधिकारिक रूप से ऐसे मुद्दे के ऊपर आधिकारिक व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए, मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये नीति से संबंधित है।
भाजपा के कई नेताओं का ये आकलन रहा कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर बिहार चुनाव में भाजपा को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी या फिर ये हार का एक बड़ा कारण बना, आपकी क्या राय है इस बारे में?
देखिए ऐसा है, आरक्षण ने प्रभावित तो किया है लेकिन निश्चित तौर से इस मुद्दे का भी असर रहा है।
तो उदित राज जी, जिस तरह से मायावती ने ये मुद्दा उठाया है और आप खुद मान रहे हैं कि बिहार चुनाव में आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, तो आने वाले चुनाव जो यूपी में होने वाले हैं, क्या ये पूरी बहस उसको लेकर छेड़ी जा रही है?
नहीं, ये मुद्दे तो रहते हैं, 2004 में बहुत बड़ा मुद्दा बना था लेकिन उस समय लोगों को समझ में नहीं आया, रिजल्ट में दिखा वो मुद्दा, ये मुद्दा तो बन गया है। इत्तेफाक से जो उधर से गुजरात से आवाज निकली हार्दिक पटेल के नेतृत्व में, अब बिहार के चुनाव में भी रहा है, अभी जो पुरानी नीतियां हैं कांग्रेस की सरकार की नीतियों का असर अब दिखने लगा है, और जैसे कि ठेकेदारी प्रथा जिसके वजह से बड़ी छटपटाहट है दलितों में, तो ये मुद्दा वैसे भी बन गया है।
बीजेपी के सांसद उदित राज से बात कर रहे थे अमल चौधरी। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.4% रही है। पहली तिमाही में आर्थिक विकास की दर 7.1% रही थी। इसे लेकर हमारे सहयोगी दिनेश उप्रेती ने आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ सुदीप बंदोपाध्याय से बात की और पूछा कि GDP आंकड़ों के आईने में वो भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर देखते हैं।
इकोनॉमी में एक स्लोली एक टर्न अराउंड जो कि ग्राउंड लेवल पे भी विजिबल है, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट अभी भी नहीं कहा जा सकता है, पर आई थिंक स्लोली इकोनॉमी में एक सुधार आ रहा है। पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ रहा है, प्राइवेट स्पेंडिंग थोड़ा मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है, पर ओवरऑल अभी भी थोड़ा दूर है इकोनॉमी में फुल फ्लेज्ड मोमेंटम आने से।
GDP आंकड़ों में हम स्लाइटली ये बात देखने को मिली, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बाकी दूसरे माइनिंग सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इनके मुकाबले ज्यादा बेहतर ग्रोथ देखने मिली। क्या ये माना जाए कि जो मेक इन इंडिया का सरकार का जो मुहिम चल रहा है ये उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है?
इस क्वार्टर में तो हम लोगों को लगता है कि उसका मार्जिनल असर मिला होगा, पर जनरल जो फेस्टिव सीजन होता है 3rd quarter में, उसके प्रिपरेशन में नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2nd quarter में थोड़ा अपस्विंग देखने को मिलता है। आई थिंक ये वही जो फेनोमेना है वो प्ले आउट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेज और तो माइनिंग सेक्टर ऐसे भी दबाव में है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में बहुत सारे दिक्कतें हैं जिसके सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए शायद इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जरूर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पर मेक इन इंडिया का असर थोड़ा आगे मिलेगा।
ओवरऑल जो GDP है, हमारी जो GDP ग्रोथ है वो 9% के अराउंड आप देख रहे हैं?
देखिए तीसरा तिमाही अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये फेस्टिव क्वार्टर है और इसमें कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने की संभावना रहेगी, और भी सारे सेक्टर्स जैसे आप जिक्र कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग की, वहां पे भी अच्छा प्रदर्शन देखने की संभावना है, इलेक्ट्रिसिटी में भी सुधार आने की संभावना है, तो सारे अगर सेक्टर्स जोड़ा जाए तो हम लोगों को लगता है कि तीसरी तिमाही के नंबर्स और भी अच्छे होंगे।
आर्थिक मामलों के जानकार सुदीप बंदोपाध्याय से बात कर रहे थे दिनेश उप्रेती। और 100 दमदार महिलाओं की सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे ऐसे पुरुषों की जिन्होंने न केवल महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में भी बताया और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में उनकी मदद की। ऐसी एक पहल की समरजीत जैना ने। कोलकाता के समरजीत जैना पेशे से डॉक्टर रहे हैं। समरजीत जैना ने यौन कर्मियों को न केवल अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया बल्कि उनके बच्चों का भविष्य संवारने में भी मदद की। सुनिए एक रिपोर्ट।
मैं
कोलकाता की तंग गलियों में बने अंधेरे कमरों से मारपीट बॉलीवुड के गानों का शोर सुनाई देता है, तो कभी कभार महिलाओं की चुहलबाजी और खिलखिलाहट चौंका जाती है। दरवाजों और गलियों में सरसराती साड़ी, स्कर्ट, सलवार कमीज या जीन्स टी शर्ट में लिपटी उघड़ी ये महिलाएं अपने ग्राहकों के इंतजार में नए नए अंदाज इजाद करती हैं। पुराने कोलकाता के सोनागाछी में ये आम नज़ारा होता है। अपनी जवानी में एक दिन में 5,000 से 15,000 रुपए कमाने वाली यौन कर्मी 50 तक आते आते अपने बाबुओं पर आश्रित हो जाती हैं। चिटफंड में निवेश कर धोखा खा चुकी या छोटे कर्जदाताओं से दुगने तिगने ब्याज दर के बोझ में दबी इन यौन कर्मियों की उम्र ढलते ढलते उनका आर्थिक और भावनात्मक सहारा भी जाता रहता है। लेकिन राज्य में इन यौन कर्मियों को उषा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड इंडिया ने एक नई पहचान दी है। इस संस्था ने इन यौन कर्मियों को न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, बल्कि उनके बच्चों का भविष्य संवारने में भी मदद की है। ऐसी ही एक है शताब्दी। 35 साल की शताब्दी सोनागाछी में ही पैदा हुई, लेकिन उनकी माँ ने कभी नहीं चाहा कि वो इन बदनाम गलियों में पले बढ़े। बीए करने के बाद अब शताब्दी उषा कोऑपरेटिव में उप प्रबंधक के तौर पर काम करती हैं।
ये तो सेक्स वर्कर का यही बैंक है, क्योंकि बाय द सेक्स वर्कर फॉर द सेक्स वर्कर अंडर द सेक्स वर्कर। लेकिन अगर बाहर में मैं काम करना जाऊं तो मेरा पास एक क्वालिफिकेशन चाहिए, बीए पास या ग्रेजुएशन या कम से कम एचएस तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम लिखा पढ़ा अगर हो तब भी काम चल जाता है, सिखा लेता है इन लोग, तो यहाँ पर फायदा बहुत ज्यादा ही है। और इस तरह से इन लोग हम लोग को मदद करता है। और सबसे बड़ा बात है कि उषा एक इंस्टीट्यूट है, सीखने का जगह है।
चिटफंड में पैसा गंवाने वाली इन यौन कर्मियों को उषा कोऑपरेटिव ने आर्थिक रूप से सशक्त किया है, साथ ही अपने फैसले लेने की आजादी भी दी है। भारतीय यौन कर्मी है और इस संस्था की एग्जीक्यूटिव बॉडी की सदस्य भी। वे कहती हैं,
पहले क्या था कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है कि पेशा करने का इच्छा नहीं है, फिर भी पेशा करना पड़ता था क्योंकि पैसा नहीं था। लेकिन अभी तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शॉक ऑपरेज होने का पहले क्या था, कोई कस्टमर आके बोला विदाउट कंडोम सेक्स करेगा तो वो भी सेक्स वर्कर को करना पड़ता था कि ज्यादा पैसा के लिए। अभी उसमें भी बेनिफिट हुआ, किसी को इच्छा नहीं रहेगा तो कोई बोलेगा नहीं विदाउट कंडोम हम नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है उषा कोऑपरेटिव में मेरा पैसा है, उसमें 200 रुपया निकाल के हमारा चल जाएगा।
इस संस्था की शुरुआत 1995 में हुई थी और उषा कोऑपरेटिव की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई डॉक्टर समरजीत जैना ने। समरजीत जैना कोलकाता के एक प्रशिक्षण संस्थान में एपिडेमियोलॉजी विभाग में डॉक्टर हैं। इस विभाग में डॉक्टर होने के नाते वे एचआईवी मरीजों के स्वास्थ्य पर काम करते थे। इस दौरान उन्हें लगा कि स्वास्थ्य सेवाएं और कॉन्डोम देने के साथ इन यौनकर्मी महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है। इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक सहकारी बैंक खोलने का विचार उन्होंने रखा। राज्य में इस मुद्दे पर खूब बहस मुबहसा हुआ, जिसके बाद कानून के 2 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। समरजीत जैना बताते हैं,
कोई यौन कर्मी बैंक अकाउंट हो, इंश्योरेंस हो, उसका खुलना बहुत तकलीफ थे, कोई होता ही नहीं। बहुत सारा यौन कर्मी करी करी एक से भी ज्यादा टाइम अपना जो रोजगारी किया वो सब चिट फंड देकर खत्म हो गया। तो इसका ही अपना जो रोजगार है वो पूरा के पूरा पैसा सिर्फ लोन का जो इंटरेस्ट है वो देने के ही खत्म हो जाते। तो उसी टाइम मैं और मेरा टीम मेंबर जो थे तो उसको बैठ के बातचीत करके कोऑपरेटिव होना चाहिए, बातचीत फिर शुरू किए डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेटिव कानून के बारे। कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड करने के लिए जो करेगा उसका गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, वो एक क्लॉज। तो दैट मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव उसी टाइम उसका नाम था सरल देव, तो वो असेंबली पे कानूनी लेकर वो 2 क्लॉज चेंज किया, उसका बाद एक कोऑपरेटिव शुरुआत हुआ।
एचआईवी मरीजों और यौन कर्मियों के बीच काम करना और उषा कोऑपरेटिव को खोलना इतना आसान नहीं था। डॉक्टर समरजीत जैना की पत्नी मधुलीना का कहना है कि कई बार उन्हें असामाजिक तत्वों ने परेशान किया, पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी, लेकिन वे अपने पति के साथ खड़ी रही।
प्रथमे काज करते गए प्रथमे अनेक रकम प्रॉब्लम में पड़ते हुए थे।
मुझे इस काम के बारे में तो पहले से ही पता था। मुझे ये भी पता था कि एचआईवी छूने से या मिलने से नहीं फैलता, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं लगता। कई लड़कियां तो हमारे घर भी आती थीं, हमारे साथ खाना खाती थीं। जब पहली बार सोनागाछी इलाके में गए तब वहाँ मौजूद कई असामाजिक तत्वों ने हमें परेशान किया उन लोगों का कहना था कि हम वहाँ रहने वाली लड़कियों से क्यों बात कर रहे हैं, उन्हें क्यों सशक्त कर रहे हैं। हमें कई बार पुलिस की मदद लेनी पड़ी तो कभी अकेले उनका सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। मेरे पति इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कई लड़कियाँ आज खुश हैं, गर्व से सड़क पर चल सकती हैं। इसकी मुझे खुशी है और अपने पति पर गर्व भी।
मधुलीना खुश है कि संस्था से इन महिलाओं और बच्चों को मदद मिली है। अब इस संस्था की 20,000 यौन कर्मी सदस्य हैं। यही औरतें इसे चलाती भी हैं। ये सहकारी बैंक बर्धमान, हुगली, हावड़ा, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में यौन कर्मियों के लिए काम करती है। इस कोऑपरेटिव से जुड़ी भारती की ये ख्वाहिश है कि अब इसका दायरा बढ़ना चाहिए और इससे अब और लोग जुड़ने चाहिए।
ऐसा नहीं कि अभी सेक्स वर्कर के लिए, हम लोग और भी चाहता है कि जो ट्रांसजेंडर है, जो महिला डोमेस्टिक वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है और बहुत सारे छोटा छोटा समुदाय है, तो उन लोग के लिए भी हम लोग सोचता हूँ कि उषा का अंदर में उसको भी लेके आए और उषा का मेंबर हो जाए वो लोग, तो उसमें क्या होगा, उस लोग फायदा कि वो भी थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ लोन लेके, ज्यादा लोन लेके वो उसका बिजनेस कर सकता है। उषा होने के बाद एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि बच्चा लोगों का जो एजुकेशन के लिए कोई पैसा नहीं था, ये उषा बहुत बेनिफिट हुआ ऐसा बना के।
सोनागाछी में 60,000 यौन कर्मी है और पश्चिम बंगाल में करीब 1,60,000। बेशक डॉक्टर समरजीत जैना की एक सोच, उनके जज्बे ने इन यौन कर्मियों को मजबूती दी है, एक दिशा दी है। एक पहल ने इन यौन कर्मियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ साथ सुरक्षित भविष्य के लिए काम करने की सोच भी दी है। सुशीला सिंह, BBC, दिल्ली। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। अमल समाचार पत्रों पर नज़र डाल चुके हैं। अमल
जी, आज तो दो ही खबरें हैं जो मुख्य रूप से अखबारों में छाई हुई हैं। उनमें से एक तो पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन पर है और दूसरी संसद में जो असहिष्णुता के मुद्दे पर चर्चा हुई है। जलवायु परिवर्तन में विश्व के शीर्ष नेताओं ने जहां एक तरफ इसमें अपनी अपनी भागीदारी की बात कही, तो वहीं भारत ने कह दिया है कि हम प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। इसमें हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी देन नहीं है। वहीं अमर उजाला ने शीर्षक दिया कि पेरिस में पाक PM नवाज शरीफ से मिले नरेंद्र मोदी। और जनसत्ता ने दोनों की एक फोटो भी प्रकाशित की है जिसमें दोनों एक सोफे पर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। वहीं संसद वाली खबर में दैनिक भास्कर का शीर्षक है कि संसद में 800 साल बाद देश में हिंदू शासक पर हंगामा। अखबार के अनुसार माकपा के सांसद मोहम्मद सलीम ने अंग्रेजी पत्रिका आउटलुक के हवाले से कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश में 800 साल बाद हिंदू शासक आया है। इस बयान पर भाजपा ने जबरदस्त विरोध किया और वहीं देर रात आउटलुक मैगजीन ने अपनी इस रिपोर्ट पर माफ़ी भी मांगी। और अगर अन्य खबरों की बात करें तो नई दुनिया, हिंदुस्तान और अमर उजाला समेत लगभग सभी अखबारों में दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल के पेश होने की खबर है। खबर के अनुसार 2 दिन की चर्चा के बाद ये प्रस्ताव पास होगा। वहीं बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा का एक युवक को थप्पड़ मारने का मामला भी सुर्खियों में है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिटाई का वीडियो देखा और गोविंदा से कहा कि ये उन्हें शोभा नहीं देता और उन्हें युवक से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं NBT में एक खबर प्रकाशित की गई है जिसका शीर्षक है राष्ट्रगान में बैठे रहे थिएटर से निकाला। ये मामला मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स का है जहां एक मुस्लिम परिवार के साथ यह हादसा हुआ। सुशील, आपको बता दूं कि ये इसका सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि हल्की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में जांच की अपील की गई थी जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया। वहीं हिंदुस्तान की एक खबर के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने करबला के बड़े जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अनुसार 3 दिसंबर को चहलुम का बड़ा जुलूस निकाला जाने वाला था, लेकिन अब एक अलम के साथ सिर्फ 15 लोगों को ही करबला तक जाने की इजाज़त है।
समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमल। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित देशों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग ने 2024 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी करने के विरोध में वोट दिया है। हैम्बर्ग उन 5 शहरों में शामिल था जो उन खेलों की मेज़बानी हासिल करने के लिए मैदान में थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने रूस के विमान को केवल इसलिए मार गिराया जिससे कि वो कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से मिलने वाली तेल की आपूर्ति की रक्षा कर सके। तुर्कमेनिस्तान में करीब 4,000 लोगों ने गाना गाकर रिकॉर्ड बनाया है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ गाने वाले लोगों का ये रिकॉर्ड तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद में बनाया गया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।